Questo parlare sta agli altri. Poi metto carne e latte. Fammi dare carne e latte. Fammi nudo in carne e latte. Fammi facciare carne e latte. E sto se sta agli altri. Dove mi devi di carne e latte? Dove mi Prata kaldı bu yerde. Bunu okumaya ne? Herhalde senelerin mitte kriyasının bir kumpası herhalde. Kendinde ki neydi? Ayrıca sesler ve mahatırımın sınav ihtiyacını kapı kapına mitte. Yani kartını kapı başına ihtiyacını. Isto gosto de suportar o meu corpo. Provoca o meu raro por mim. A cuspir no bugue, das mentiras. Má अपने हाथों में लेकर के बड़े विनीत होकर के रहा रहा वो आपने हमें कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रेम तत्व सारोष तत्व लीला तत्व विनीत होकर कृष्ण तत्व राधा तत्व
Ordnung. विशेषकर के ब्रह्म सूत्र के अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद में जो जन्मादृष्ट है उसको यहाँ पर सब लिया है। विभिन्न आचार्यों ने, हजारों आचार्यों ने इसका भाष्य किया, इसकी टीकाएं भी की, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने संक्षेप में सारभौम भट्टाचार्य जी को जो अर्थ है इसको बतलाया, वही अर्थ धीरे धीरे से सनातन गोस्वामी जी, फिर सनातन गोस्वामी से जीव गोस्वामी, और फिर उनसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, और उन्होंने बतलाया बलदेव जी। हम लोग पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी का इसका अर्थ, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, फिर जीव गोस्वामी का, फिर चैतन्य महाप्रभु जी का इसका संक्षेप में बतलाएंगे, जो हमारे संप्रदाय का ही है। बिजली करे जब आज यही पर समाप्त, पंचा कल्पतरुण
तवैवास्मी तवैवास्मी न जिगामित्या विना इति विज्ञाय राधे तं मे महामुख्यम्। हमारे हृदय के अंदर में कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रास तत्व, विलास तत्व, ये सब चीजों का स्फूर्ति कराई हमारे अंदर। और फिर जैसे सुख पक्षी को कोई पढ़ा करके तैयार करके फिर उसे सुनता, वैसे ही आपने किया। जैसे समुद्र अपना पानी मेघों में संचित करके फिर उसी से ग्रहण करके सीप, अपने सीप और घोंघे में रत्न ग्रहण करके रत्न करता है, या रत्न सब और कुछ नहीं, समुद्र का पानी ही समुद्र में गिर करके और रत्न बना। मेघ में वो रत्न नहीं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं रत्नाकर हैं। उन्हीं से ये विचार घूमने गया, फिर कैसे गया वो बारीकी से जो इस विषय के वैज्ञानिक हैं वो समझें, साधारण आदमी नहीं समझे। अंतर्जामी रूप से भगवान, ईश्वर की यही रीति है कि अंतर्जामी रूप से किसी के हृदय में वो भद्र प्रेरणा करते हैं। कुछ चीजें हैं अपने साधन की और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कृपा सिद्ध हैं, ऊपर से अवतरित होती हैं। हम चेष्टा कर सकते हैं किंतु वो भाव आएगा कि नहीं आएगा वो भाव के अधीन है, वो भगवान ही भाव हैं या राधा जी वो भाव है। तो वो जब करुणा करके देखेंगी जो हमारे यहाँ पर प्रकाशित रहने का क्षेत्र इसमें हो गया तो संभव नहीं चलेगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कहा कि हमने उनकी नाभि कमल से हमें पैदा हो करके अनंत काल तक ऊपर नीचे घूम करके इसका आदि खोजने की चेष्टा की किंतु नहीं मानी। इसलिए हम लोगों की चेष्टा का अधिक मूल्य नहीं है। यदि हम दीनहीन अकिंचन बन करके
अनकंडीशनल सरेंडर करके रोए गाएं खिदियाएं, तो वो चीज हमारे अंदर में ब्रह्मा जी निराश हो गए, भगवान के शरणागत हो गए, तो उन्होंने उनके अंदर में अंतर ज्ञान निश्चित कर लिया। पहले उनको ज्ञान हुआ, जब ज्ञान हुआ भगवान ने देखा जिसको ज्ञान हुआ अनुभूति तो हुई नहीं, तो भगवान ने क्या किया, गृहान बदिता कृपा करके लो मैं तुम्हें देता हूँ, ये कर करके अपना गांव ज्ञान उनके अंदर में अनुभूति कर दिया। तब फिर उनकी विज्ञानमस्तु मे अनुग्रह हमारे हम जैसा मैं अपनी चेष्टा से वो लाख कोटि जन्मों में नहीं, उन्होंने ये भी बतलाया 50,000 वर्ष तक दिव्य वर्षों से अपने वर्षों से, हमारे वर्ष आपके वर्ष से नहीं, अपने वर्षों से कठोर आराधना की, तभी गोपियों की चरण धूलि नहीं प्राप्त, उनको जगत का की सृष्टि इत्यादि करने का ये ज्ञान तो मिल गया, किंतु गोपियों की चरण रज प्राप्त करने के अधिकारी नहीं, अपने आप उन्होंने कहा, इसलिए ये ज्ञान सहज नहीं। और ऐसे ही हम लोगों को एक दिन में नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो हम ये है नहीं या होगा ही नहीं, निराश हो जाने वाला गड़बड़, कभी निराश मत हो, इसलिए बतलाया ना उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म करो, अन्यथा तो निराश हो जाएगा तो कुछ जो मिलने वाला था वो भी नहीं, कभी निराश मत हो। हमारे उपनिषदों को देखने से ऐसे ही मालूम होता है, इंद्र और विरोचन गए ब्रह्मा जी के पास में, वो खबड़ा करके 25 वर्ष ब्रह्मचर्य करके विरोचन आ गया और मैंने समझ लिया, ये मान लिया, बस वहीं तक रह गया, ये सर्वी सर्वस्व। और इंद्र विवेचना करते पुनः पुनः उनके पास में गए, तब अंत में उन्होंने उनको आत्मज्ञान, वो भी आत्मज्ञान मिला और कुछ अधिक परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला, रस विचार उनको नहीं मिला। हम लोग जो चीज चाहते हैं ना, ये पत्थर घुस कर हम लोग कुछ नीचे वाला कुछ भी नहीं चाहे, कोई भी होगा हम तो गोपी थे, राधा जी की दासी, अरे जो ब्रह्मा को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, नारद को नहीं मिला, उद्धव नहीं हो सके, और वो चुटकी बजाते ही मिल जाएगा, ऐसी धारणा मत करो। यदि 1,00,000 जन्मों में भी मिले तो समझे बहुत जल्दी मिले, तो उसी का मुझे बता रहे थे कैसे उनको मिला, उसी के लिए उपमा दे रहे हैं। ब्रह्मसूत्र का यह भाष्य, ब्रह्मसूत्र गायत्री का भाष्य, और गायत्री ओंकार प्रणव का ये विस्तार है, उसमें भू भुव स्व जो तीनों देवतियां हैं, ये संसार है, संसारिक आसक्ति जब तक भू भुव स्व में रहेगी तब तक वो बहुत दूर है, इसलिए इसके ऊपर बुद्धि उठेगी, अर्थात अवांग मन स्व गोचर जब हो जाएगा और उसके शरणागत होंगे तो वो भर्गदेवस्य स्वयं, वो भर्गदेव कृष्ण ही हैं, अपनी शक्ति को पहले प्रकाश करेंगे, जो सूर्य को भी शक्ति प्रदान करने वाली है, तब फिर वो अपनी कृपा करके और तब यहाँ पर प्रतीत हो, तो उसी में धियो जो धीयह माने बुद्धि व्यक्ति, मैं उनका ध्यान करता हूँ किस लिए, किस प्रयोजन के लिए, हमारे हृदय में इसलिए ध्यान करता हूँ, उसी को श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में बताया, सत्यम परम
मैं उस परम सत्य वस्तु का मैं ध्यान करता हूँ, किस लिए, प्रयोजन क्या, वो भी हमारे हृदय में उदित हो, इसलिए उसी के लिए यहाँ पर पहला श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक दे रहे हैं। वेदांत सूत्र ने पूछा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, शंकराचार्य इत्यादि ने बतलाया कि जगत जगत को नश्वर जानने के बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा। हमारे जी गोस्वामी इत्यादि ने कहा कि पूर्व मीमांसा हमको कहो तब फिर उत्तर मीमांसा में हम चले। जब जगत में कहीं भी सुख शांति न मिले तो परतत्व को जानने के लिए गुरु के पास में प्रश्न करो। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, तो एक उत्तम श्रेय को जानने के लिए उत्तम कल्याण हमारा कैसे होगा। जब तक वो वस्तु हमारे हृदय में आविर्भूत नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण, तो उसी को यहाँ पर बतला रहे हैं। व्यास जी कहो या सुखदेव गोस्वामी कहो, व्यास जी वंदना और मंगलाचरण में ही वस्तु का निर्देश, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है श्रीमद् भागवत इसी श्लोक में बतला, कैसे उनको जाना जाएगा इस विषय को भी बतला, और वस्तु है क्या, सब प्रकार से इसको सोच विचार करके तब ये वंदना। सत्यम परम भी नहीं, कुछ लोग कहते हैं, एक बड़े विद्वान यहाँ के कह रहे थे, सत्यम परम भी नहीं तो कृष्ण की वंदना यहाँ पर की नहीं गई, तो ये कृष्ण ही श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय हैं या उनका प्रेम, ये कैसे समझाए। तो हमने जी गोस्वामी का विचार उनको बतलाया, ये सत्यम परम परतत्व जो है वो सत्य स्वरूप है, वो कौन है भागवत में ही बतलाया गया, सत्यस्य योनि निहितं च सत्त्वे सत्तस्य सत्तम
सत्तम सत्तार्थं शरणं प्रपद्यते।
तो ये सत्य किसके लिए कहा गया, जो देवकी के जठर में है, गर्भ में है, गर्भ स्थिति के समय में देवता होता, इसलिए कृष्ण ही वही परम है। अहो भाग्यम अहो
भाग्यम
परम परम मनुष्य लिंगम इत्यादि ने कहा। जन्मादस्य जपः अन्नयादि कर्तस्य अर्थो अभिज्ञस्वात् तेने ब्रह्मनिदाजाद कवये मुह्यन्ति जप सूत्रय ते जो बाद में काम तथा विरुद्ध जब प्रति सर्वो अनुसार धामना से निरस्त को सब करें। हम लोग संक्षेप में इसका कुछ अर्थ, पहले हम लोग साधारण रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जी की, वो क्या है भागवतार मरी की माला से इसका अर्थ कहेंगे तो समझें, नहीं तो बड़े बड़े विद्वानों ने जीव गोस्वामी और सब लोगों ने लिखा है वो समझ में नहीं आता, वो समझ में आना बड़ा कठिन, इसकी कितनी टीकाएं हैं इसका ठीक नहीं। एक सौ आठ टीकाएं तो मिलती हैं, और कितने हैं इसकी टीका टिप्पणी भाष्य अनुभाष्य कितना है इसका, समस्त विद्वानों ने अपनी विद्या कि सीमा यहीं पर लेकर के विचार, जैसे जन्मादर्श से जता वो ब्रह्मसूत्र का अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद वाले में जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, बस चार सूत्रों पर विशेष विचार, और उसी में समस्त वेदांत सब उसी में लिया, वहीं की विद्या उनकी वहीं तक। वैसे इसी श्लोक में उन लोगों ने बड़े बड़े व्याख्याकारों ने इसकी दी, हम उस टीका में से थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश करें। भक्ति विनोद ठाकुर जी उनकी क्या भगवतार्थ मरीचि माला में तो ये बतलाते हैं सत्यम परम परम माने यहाँ पर परम तत्व वस्तु अद्वैत ज्ञान पर तत्व जिसको भागवत ने कहा वही परम सत्य सत्य त्रिकालिक सत्य जो वो परम तत्व मैं उनका ध्यान करता हूँ निरस्त कुहूतम उसमें कोई वंचना इत्यादि नहीं है माया नहीं है किस प्रकार से वो तत्व है इस तत्व का को निरूपण करने के लिए एक उनका शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते हैं और एक गौण रूप से अन्य और व्यतिरेक दो रूपों से वर्णन करते हैं। पहला जो ये जो उन्होंने कहा सत्यम परम अभी नहीं यही भगवान का शुद्ध स्वरूप है वो कैसे हैं सर्वकाल में सत्य है सर्वकालिक सत्य है सर्वशक्तिमान है रस के समुद्र हैं वही परम तत्व है समस्त अवतारों के अवतारी उन्हीं को कुछ लोग ब्रह्मा कुछ लोग परमात्मा कोई लोग स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में बुद्ध कर सकते यही परम सत्व ये अपने धाम में नित्य काल अवस्थित रह करके वहीं पर निरस्त हो अर्थात वहां पर माया नाम की कोई चीज नहीं है रीते अर्थम जत प्रत्येत न प्रत्येत चार माया किसको कहते हैं जो स्वरूप तत्व से बाहर है स्वरूप तत्व में जिसकी अभिव्यक्ति कुछ नहीं है वो बस वास्तव में यथार्थ अर्थ अथवा तो कृष्ण में अपने समस्त समय अपने धाम में अर्थात गोकुल ब्रज मथुरा और द्वारका सब समय वहीं पर नित्य वहां पर प्रकाशित है वहां पर माया है यही उनका स्वरूप है और इतर स्वरूप को वर्णन करने के लिए हम लोगों के यहाँ यह रूप तो प्रकाशित नहीं है तो उस रूप को गौण रूप में प्रकाशित करने के लिए कह रहे हैं जन्मादस्य जगत वही सत्य स्वरूप जो परम तत्व वस्तु है वो जगत में आविर्भूत होकर के अपने अवतार से या कलाओं से या तद्रूप वैभवों से वो इस जगत में प्रकट होते हैं वो सर्वशक्तिमान है अखिल रसामृत सिंधु है वो प्रभु उनकी पराशक्ति एक है वही शक्ति विविध स्वीय थे विविध रूप में सुनी जाए एक ही शक्ति के तीन प्रकाश हैं वो है संबित संधिनी सत चित और तो वही शक्ति तीन रूपों में परिणत होती है परिणत माने क्या
प्रकाश
ब्रह्माधिकारी नहीं है वो अपर अपरिणाम है उनकी शक्ति ही तीन रूपों में परिणत कैसे चित जगत को अपने चित स्वरूप से प्रकाश करते हैं और वहां की जितनी भी चीजें हैं वो स्वरूप शक्ति की चित शक्ति वृत्ति से वो प्रकाशित उसका उसकी एक और शक्ति है जिसको तटस्था कहते हैं जो अणु है चित मात्र है अणु उसके द्वारा अनंत जितने जीव हैं सब वो प्रकाशित ये सब चिन्मय है और तीसरी शक्ति है जिसको माया शक्ति कहते हैं इस शक्ति के द्वारा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों का यह जो बाहरी बाह्य रूप है वो सब उसे प्रकाशित जो कुछ हम इन आंखों से जो नहीं भी देखते अनंत ब्रह्मांड सब है, कहाँ कितने ब्रह्मांड और क्या है उनकी विभूतियाँ भगवान की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं तो हम लोगों की बताए इन शक्तियों से बोला। जीव भगवान की तथा शक्ति का ये प्रकाश है या उसी का परिणाम है तो चेतन, किंतु भगवान की अघटन घटन पटयसी स्वरूप शक्ति के एक वृत्ति के द्वारा जड़ जगत में प्रवेश करके अपने को जड़ समझ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव चेतन है, उसको कभी भी अज्ञान नहीं होना चाहिए। ब्रह्म सब समय ज्ञान स्वरूप, वो ऐसा माया में नहीं फंसेगा, किंतु ये छोटा होने के कारण अंश होने के नाते माया के द्वारा उसकी ज्ञान की वृत्ति ढक जा सकती है, इसलिए ढकने से वो भगवान को भी भूल जाता है और अपने को भी भूल जाता है और स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को ही मैं मानने लगता है। अब ये बतला रहे हैं कि जन्मादस्य अस्य जगतस्य, ये जगत की जो सृष्टि स्थिति और प्रलय जिनके द्वारा से हुआ, अथवा ये कैसे हुआ, अन्य रूप से भगवान की शक्ति तीन रूप में हो करके और अन्य रूप में तीन जगतों को प्रकाश किया, यहाँ तक अन्वय हुआ। अब व्यतिरेक क्या हुआ, जीव चिन्मय होने पर भी अपने को भूल कर माया में फंस कर अपने शरीरों को मैं और मेरा समझ करके किसी में लपेट गया और भगवान को भूल गया, ये व्यतिरेक अन्यादि तरतश्च और इतरतश्च अर्थेषु, जितने भी उपादान ये जगत के सृष्टि के हैं महत्त्व से लेकर अहंकार बुद्धि मन और उन लोगों से होने वाली इंद्रियां और पंच तत्व और पंच तत्वों के मूल जो रूप है उसको क्या कहते हैं,
तन्मात्राएं,
ये सब रूप रस गंध शब्द स्पर्श और उसके द्वारा ये स्थूल जगत, ये सब विषयों में वही अभिज्ञ है, ब्रह्मा तक भी नहीं प्रकृति भी नहीं है, इसलिए उनको बतलाया अर्थेषु अभिज्ञ। स्वरार्थ वो स्वयं प्रकाश तत्व, उनको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है। तेने ब्रह्म विदाज आद कवय, आद कवि जो है ब्रह्मा, उनके हृदय में अपने तत्व को प्रकाशित किया जिन्होंने, जिसमें बड़े बड़े मुह्यंत जत सूर्य सूर्य लोग अर्थात देवता लोग मुक्त पुरुष भी जिसमें मोहित हो जाते, ऐसे वेद का प्रकाश किया, शब्द ब्रह्म माने वेद, और तेजो बार निदान जथा विनिमय जत्र त्रिसर्गो अमृषा, अब जो बतलाया तीन प्रकार की सृष्टि चित सर्ग जीव सर्ग और माया सर्ग, ऐसे कहने में समझ में नहीं आया जब भगवान ने कैसे सृष्टि की और उसका उदाहरण क्या है, इसको समझाने के लिए कहते हैं कि तेजो बाय मृदम जत्र विनिमय, अर्थात चित स्वर्ग का अर्थात चित सृष्टि का उदाहरण कथन चित तेज है, तेज वो तेज माने अग्नि प्रकाश, जैसे हम लोग सब बचपन में स्कूल में पढ़ने जाते तो सड़क पड़ता था तो वो बच्चे हम लोग वो पत्थर लेकर के पत्थर पर जोर से मारते थे तो उसमें आग की चिंगारियां निकल जाती, अच्छा चिंगारी पहले थी या जब हमने मारा तभी निकली, उसके अंदर में है। ऐसे ही आग है, तेज है सर्वत्र, किंतु घर्षण से कहीं कहीं पर वो आग पैदा हो, जैसे वनों में पेड़ों के संघर्ष से आग पैदा हो जाती है, वो दिखती नहीं, अब फिर उसी में समा जाती है। ये चित्त सर्ग जो है, चित्त सृष्टि है, साधन के द्वारा कभी कभी झलक में बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि ज्ञानी विज्ञानियों को कभी कभी झलक में दिखता है, सब समय नहीं। नारद जी जैसे व्यक्ति को जो कितनी कठोर साधनाएं थी, क्षण मात्र के लिए विद्युत की भांति उनके आराध्य देव दर्शन दिए और फिर थोड़ी देर के बाद में अंतर्भूत हो और बोले इस शरीर से उस चीज को तुम दर्शन करने योग्य नहीं हो, मैंने कृपा करके दिखला दी। साधन करते करते जब यह शरीर दूर हो जाएगा, मन बुद्धि अहंकार दूर हो जाएगा, तब तुम्हारा चित्त सर्ग उसमें से। इसलिए इस जगत में चित्त जगत का, भगवान का दर्शन का, वृंदावन का, ये सब चित्त सर्ग हैं। ये कभी कभी जीव जगत में सब समय में और बाहरी जीव सर्ग जो है, जीव जो जितने हैं ये कैसे हैं, जैसे पानी है। पानी की दो अवस्थाएं, यूं तो बहुत सी अवस्थाएं हैं जिसमें दो अवस्था। पानी जब तरल होता है, पानी जब बर्फ बन जाता है, बर्फ होने पर कठोर बन जाता है और पानी रहने में, अभी हम लोग कठोर हो गए हैं। जीव भगवान का नित्य दास है, ये उसकी तरलता है, इसका शुद्ध स्वरूप है प्रेम से जब तरल हो जाएगा, अथवा भगवान का भजन करते करते उसमें भगवान का दर्शन नहीं पा रहा है, उस विरह में जबकि तरल हो जाएगा तब फिर भगवान का। इसलिए अभी ये बद्धावस्था है, अभी माया के द्वारा जड़ हो गया, जैसे अत्यंत ठंड से हिमालय में पानी जम करके बर्फ हो जाता है, बर्फ की सिल्लियां लगी रहती हैं, ऐसे ही हम लोग अभी जमे हुए हैं, हमारी बुद्धि जड़ हो गई। और जब तरण होगा साधु संतों के सानिध्य में, जब तरण हो जाएगा तो तरण होकर के भगवान की सेवा मिल जाएगी। ये उपवास को एक पत्थर और एक, ये तीनों जीवों के दो चीजें दिख रहा है। और मृदान मट्टी उदाहरण दिया किसका, जब पूर्ण रूप में नहीं है सब, आंशिक कुछ, पूरा तो आ ही नहीं सकता कोई उदाहरण। ये मनुष्य बंदर है, ये मनुष्य गधा है, तो सब पूर्ण रूप में लक्षण नहीं आए, उसी तरह से सामान्य रूप में आंशिक लक्षण के द्वारा बतला रहे हैं। जैसे मिट्टी है कच्ची, उसका घड़ा बना लो, लोटकी बना लो, उसी का गणेश जी बना लो, उसी का शंकर बना लो, उसके तरह तरह की चीजें बना लो, प्याला कप हंडिया सब कुछ बना सकते। उसी तरह से अलग अलग चीजें, वो मिट्टी ही सब समय है। मान लिया कि मिट्टी को पका दिया, अब तो बनेगा नहीं, किंतु नहीं कुछ दिनों के बाद में जब पुरानी हो जाएगी वो और अलग अलग कण बिखर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएगी, फिर मिट्टी होकर के फिर उसे बनेगा। मूलतः वो मिट्टी है, फिर मिट्टी में वो प्रवेश किसी न किसी रूप में करता। उसी प्रकार से ये महत्त्व और ये सब चीज़ों का ये विकार, ये जड़ विश्व ब्रह्मांड है। इसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, बीज है और सोना चांदी जितने धातुएं हैं सब इसी से सुंदर। चंपे का पुष्प, बेली चमेली का पुष्प भी इसी से पृथ्वी से निकलता है और दुर्गंध भरे ये सब चीज़ें। ये टट्टी टट्टी क्या चीज़ है, वही चीज़ें तो हैं, इसका कितना दुर्गंध होता है। विष भी उसी से और उसी से ही होता है। दूध क्या चीज़ है, घास ही तो है न, क्या चीज़ है और वो भत्तूरे में जो बीज होता है वो क्या चीज़ है, मिट्टी का ही रस तो है। इसलिए विभिन्न चीज़ें हैं, उसकी उपमा ये मिट्टी दी। कथन चित थोड़ा सा विनिमय जत्र त्रिस्वर्गो अमृषा, ये त्रिसर्ग जो जीव सर्ग,
चित सर्ग
और अनुचित सर्ग माने जीव सर्ग और ये प्रकृति, ये जगत का ये सर्ग, ये कुछ स्थलों में कुछ असत्य होने पर भी, अमृषा होने पर, मृषा होने पर भी, किंतु है सत्य, सत्य है। कैसे? जब मनुष्य सत्य है तो उसकी छाया जो है वो झूठी होगी? वो भी तो सत्य ही है। इसलिए ये जगत व्यापार जो है ये भी मिथ्या नहीं है, ये भी सत्य है। किंतु वो जैसे सत्य चित सृष्टि का है ऐसा जीव भी नहीं है और ये भी नहीं। ये भी कुछ कुछ आंशिक रूप में, किंतु ये कुछ अंशों में ये सत्य है किंतु नश्वर और परिणाम से। तो जिसके कारण से ये सब सारी सत्ताएं सत्य जैसे दिखती है, किससे? वो ब्रह्म है ना, प्रणति
प्रणति,
वो स्वयं ब्रह्म है, नित्य नवीन रूप से वो बढ़ता है और दूसरों को भी वर्धित करता है और सब जगह में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट है, जगत के बाहर भी और भीतर। यदि हम लोगों में भगवान की सत्ता नहीं होती तो हमारे जीव की और ये शरीर की सत्ता होती? यदि उनकी शक्ति नहीं हो तो चीज सर्ग भी नहीं होता। जड़ सर्ग की तो बात ही क्या है, जो कुछ है यदि भगवान की सत्ता उसमें है तो वो ठीक है, और नहीं तो जिन चीजों में भगवान की सत्ता नहीं है, जैसे ख पुष्प, आकाश पुष्प, इसमें भगवान की कोई सत्ता है इसलिए वैसा नहीं। इसी तरह से जो चीजें नहीं है उसमें भगवान की सत्ता नहीं है इसलिए नहीं, और जहां जहां पर भगवान की सत्ता थोड़ी भी रहे तो वो वस्तु है। तो वहां पर त्रिसर्गो अमृषा, ये त्रिसर्ग जो है ये अमृषा, अमृषा माने
नमृषा,
कहीं कहीं पर वो असत्य जैसे दिखते हैं किंतु है नहीं, तीनों ही तीनों को बतलाया। क्यों? जिनके कारण, जिनके तटस्थ लक्षण के कारण ऐसा होता है वही अपने धाम में स्वयं अपने शक्तियों से परिवेष्टित, शक्तियों से युक्त, वो अपने धाम में, धाम माने अपने तेज में, अपने स्थान में, धाम माने
आश्रय,
गोकुल मथुरा वृंदावन द्वारका इत्यादि नित्य वहां पर, और भी उनके जो धाम है वैकुंठ इत्यादि में, वो धाम में वो नित्य परिपूर्ण रूप में है, सदा निरस्त कुहकम, माया का जहाँ पर कोई भी व्यापार नहीं है, निरस्त कुहकम सत्यम परम, वो परम तत्व है उनका मैं ध्यान करता हूँ। इसलिए ध्यान करता हूँ, जैसे ब्रह्मा ने ध्यान किया तो अंत में उनके हृदय में सबको प्रकाशित कर दिया, उसी प्रकार से हमारे हृदय में इस सत्व तत्व को हमारे हृदय में। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बतला रहे हैं साधारण रूप में, ये साधारण रूप में समझ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, पहले तो पहला अर्थ तो इसी रूप में, वो तीन प्रकार के अर्थ किए, एक अर्थ किया साधारण जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया, ये तो पहला अर्थ उन्हीं लोगों के आधार पर उन्होंने किया। दूसरा अर्थ उन्होंने किया केवल कृष्ण पर, तीसरा अर्थ किया राधा और कृष्ण पर, और चौथा अर्थ किया भक्ति पर, प्रेमा भक्ति के ऊपर,
आदरस
और भक्ति के ऊपर, भक्ति आदरस इत्यादि।